नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखी गई तीतुस के नाम पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, सुनते हैं ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और मैं उन सभी श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर अपने जीवन की उन आशीषों को पत्र के द्वारा से और फोन के द्वारा से हम तक पहुँचाते हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि जब आप कार्यक्रम को सुनते हैं और आपको परमेश्वर का वचन के द्वारा से आशीष मिलता है तो निश्चय ही अपनी आशीषों को हम तक पहुंचाएं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। तो मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, दया और करुणा के लिए, जिसके माध्यम से प्रभु आप प्रतिदिन हमारे जीवन में अपनी आशीष उंडेलते हैं। आज जब हम फिर से आपके वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी आशीष दें, उन्हें बुद्धि, ज्ञान और समझ दें, ताकि आपके वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए, तीतुस की पत्री के द्वारा हम आपके आशीषों को ग्रहण कर सके। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं और किसी प्रकार की परेशानियों में हैं। पिताजी, आप उन्हें अपनी शांति प्रदान करें। आज के वचन के द्वारा हम सबसे बोले और बातचीत करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों बाइबल में से तीतुस नामक पत्री से अध्ययन कर रहे हैं, और हमने देखा पिछले अध्ययन में कि पौलुस आचरण के बारे में हमें बताया कि किस प्रकार से बूढ़े पुरुष को सचेत और गंभीर और संयमी होना है, और इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों को भी अपने चाल चलन में पवित्र होना है, दोष लगाने वाली नहीं, पियक्कड़ नहीं और अच्छी बातों को सिखाने वाली हो। इस प्रकार से हमने यह भी देखा कि जवान स्त्रियों को चेतावनी देने वाली हो, ताकि वे अपने पति और बच्चों का ठीक से ख्याल रख सके। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कलीसिया को सुचारू रूप से चलाने के निर्देशों के बाद अब पौलुस कहता है कि तीतुस क्रेते वासियों के साथ अधिक नम्रता का व्यवहार न करे, क्योंकि वे अन्य विश्वासियों के साथ भिन्न हैं और अधिक असभ्य और निर्दयी हैं। वहां कुछ झूठे शिक्षक भी थे जो अपने लाभ के लिए अनुचित शिक्षा दिया करते थे और शिक्षा देकर पौलुस का खंडन किया करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप क्रेते वासियों के घर उजड़ रहे थे। तीतुस को ऐसी शिक्षाओं का विरोध करना था, ताकि उसके विश्वासी गलत रास्ते या गलत और झूठी शिक्षाओं की ओर ना झुकें। जैसा कि आज हम भी कई बार कलीसियाओं में देखते हैं कि झूठी शिक्षाएं हमारे कलीसिया के अंदर आ जाती है और हमारे विश्वासियों को प्रभावित करती है। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। तो आइए हम पढ़ें तीतुस की पत्री 2:6 में ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, अब पौलुस जवानों की ओर ध्यान आकर्षित करवाता है और संभवतः उसका अभिप्राय है कि तीतुस युवकों को शिक्षा दे। तब हम आगे देखते हैं तीतुस 2:7 में, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई गंभीरता। यहाँ पर लिखा है कि गंभीरता। पौलुस युवा तीतुस से कहता है कि वह युवकों के लिए एक आदर्श बने, जिस प्रकार वह तीमुथियुस से भी कहता है उसी प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि वह तीतुस से भी कहता है कि वह आदर्श बने। लिखा है उपदेशों में सफाई, अर्थात उसकी शिक्षाएं परमेश्वर के वचन में आस्था और व्यवहारिक विषयों में गंभीरता प्रकट करे। तीतुस 2:8 में हम पढ़ते हैं, और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा न कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हों। दूसरे शब्दों में उसका वार्तालाप भी प्रकट करे कि वह परमेश्वर की संतान है, एक उच्च जीवन जीने का आग्रह करता है। तीतुस 2:9 में हम पढ़ते हैं, दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलटकर जवाब ना दें। लिखा है कि दासों को समझा। मेरे प्रियो, उस समय कलीसिया में दास भी थे। उस युग में या उस युग की कब्रों पर जो नाम खुदे थे उनमें 90% दास थे या मुक्ति प्राप्त दास थे। उस युग में सुसमाचार दास वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा था, क्योंकि लोग दासत्व का काम करते थे और साथ में परमेश्वर के वचन पर विश्वास भी करते थे, और यही कारण है कि बहुत सारे कब्र विश्वासियों के थे। आगे हम पढ़ते हैं, अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें। यहाँ पर अधीन रहने का अर्थ यहाँ भी आज्ञाकारिता है, प्रतिक्रिया दिखाना है, अर्थात उनमें और उनके काम में रुचि रखें। जो भी काम दिया जाता है बड़ी ईमानदारी से करें। हमें अपने काम में और विशेष करके मसीही सेवा में संपूर्ण मन से काम करना है, अन्यथा सेवा निवृत्त हो जाएं, सेवा छोड़ दें। यदि आप मसीही संस्था के कर्मी हैं तो केवल इसलिए कि आप सेवा करना चाहते हैं। मेरे मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छा आर्थिक सहयोग दिया जाता होगा, परंतु वह मुख्य बात नहीं है। मसीही सेवा मन से, मस्तिष्क से और हाथों से की जाती है। आगे लिखा है, उलट कर जवाब ना दें, अर्थात अभद्र व्यवहार ना करें। जब आपका स्वामी आपसे कुछ कहे तो उससे आप अभद्र व्यवहार ना करें, उससे अच्छी रीति से जवाब दें। तीतुस 2:10 में आगे कहता है, चोरी चलाकी ना करें पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाएं। लिखा गया है कि चोरी चलाकी ना करें। चोरियों के कारण कंपनियों को प्रतिवर्ष लाखों का नुकसान उठाना पड़ता है। आपको चोर नहीं बनना है। एक विश्वासी चोर नहीं हो सकता। तब लिखा है, सब प्रकार से विश्वासी, अर्थात आपको निष्ठावान बनना है, उन्हें निष्ठावान बनना है कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाएं। मुझसे पूछा जाता है कि क्या विश्वासी महिलाओं को श्रृंगार करना चाहिए। मैं कहता हूं हाँ, और पौलुस कहता है शोभा बढ़ाएं। यदि आप विश्वास में दृढ़ हैं तो अनुकूल श्रृंगार करें। मैं एक दयालु जीभ में लिपस्टिक को अधिकाधिक देखना चाहता हूं। दयालु शब्दों से बढ़कर कोई लिपस्टिक नहीं, और निष्ठा एवं सत्य का पाउडर आप लगाएं। ओह, आज सब प्रकार के श्रृंगार विश्वासी काम में लेते हैं, परंतु अपने जीवन से परमेश्वर की दया और प्रेम को नहीं दिखाते। कलीसिया परमेश्वर के अनुग्रह का प्रचार करे। पौलुस आदेशों को रोककर उन लोगों में शिक्षा की नींव डालता है। वह तीन कालों में अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल में सुसमाचार को प्रभावी बनाता है। मेरे प्रियो, मेरा बचपन खेलकूद में बीता, परंतु मैं जानता हूं कि मेरा जीवन 3-4 घंटों के समय को ऐसा पार करता था जैसे कुछ पता ही नहीं चलता था, क्योंकि हम खेलकूद में व्यस्त रहते थे। बताया जाता है कि अब ऐसे खेलकूद गांव में जो होते थे इस समय नहीं है। जी हाँ, सब बच्चे आज क्रिकेट खेलते हैं। पुराने दिनों में कहीं कहीं पर लोग गिल्ली डंडा कहते थे या कबड्डी कहते थे या अन्य प्रकार के घरेलू खेल खेले जाते थे। और इसी प्रकार से जब हम कभी तेज ध्वनि को सुनते थे तो हम ऊपर की ओर देखते थे, क्योंकि आकाश में हमें जहाज दिखाई देता था। आज जेट विमान है जो थोड़े ही समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। यह बड़ी अद्भुत बात होगी। परंतु मैं सोचता हूं कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है और परमेश्वर का अनुग्रह 3 कालों में संसार की सबसे आश्चर्यजनक बात है, जिसे हम अगले 3 पदों में देखेंगे। लिखा हुआ है, परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। पद 11 में हम इसे पाते हैं। यह पूर्व काल है, चेतावनी देता है। और तब पद 12 में हम देखते हैं, यह अनुग्रह का वर्तमान समय है, धन्य आशा के प्रकट होने की बाट जोहते हैं। यह पद 13 में है और यह भविष्य का समय है। अब हम इसका निकट से अध्ययन करेंगे। तीतुस की पत्री 2:11 में पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। मेरे मित्रों, पौलुस क्रेते वासियों से कहता है, तुम्हें ठोस नींव की आवश्यकता है, इसलिए मैं तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह की शिक्षा देता हूं। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर का साधन है। मैंने एक महान प्रचारक डॉक्टर डॉट को सुना है। वह कह रहे थे, मेरा प्रचार मंच सुसमाचार का स्थान है और मेरा कार्यालय अच्छे परामर्श का स्थान है। सुसमाचार अच्छा परामर्श नहीं है, सुसमाचार है, वरन उससे भी कहीं अधिक है। यह उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ है। मेरे प्रियो, पौलुस तीतुस से आग्रह करता है कि वह क्रेते के विश्वासियों से आग्रह करे कि वे सुसमाचार की शोभा बढ़ाएं, क्योंकि वह परमेश्वर का सामर्थ है। विश्वासियों को पराजय और विफलता का जीवन जीने का कोई भी बहाना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। लिखा है, प्रगट है। प्रगट है का अर्थ है चमक रहा है। 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु ने हमारे लिए जो कार्य किया वह सुसमाचार है, शुभ संदेश है। वह मर गया। जी हां, क्रूस पर वह हमारे पापों के बदले में मर गया और फिर मृतकों में से जी उठा। परमेश्वर न तो अपने प्रेम और न ही अपनी दया से हमारा उद्धार करता है। इफिसियों के पत्र 2:8 में लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। दया परमेश्वर की अनुकंपा थी कि उसने मनुष्य के लिए एक मुक्तिदाता भेजा। यदि परमेश्वर की दया से एक मनुष्य उद्धार पा सकता है तो सब मनुष्य उद्धार पा सकते हैं। प्रभु यीशु के मरने की आवश्यकता ही क्या थी? यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा उद्धार पा लेता, क्रूस छल हो जाता। परमेश्वर निसंदेह मनुष्य से प्रेम करता है, परंतु उसने प्रेम से हमारा उद्धार नहीं किया है। प्रेम परमेश्वर की प्रेरणा है। परमेश्वर प्रेम ही नहीं है, वह धर्मी है, वह पवित्र है और न्याय करता है। परमेश्वर की पवित्र अनिवार्यताएं, उसके न्याय संगत दावे और उसके धार्मिकता के मानदंड पूरे किए जाने थे। मेरे मित्रों, परमेश्वर का प्रेम हमारे उद्धार के लिए तरसता तो है, परंतु न्याय का अपरिवर्तनीय नियम प्रेम को इस काम के लिए असमर्थ बना देता है। अतः प्रभु यीशु ने हमारे पापों के निमित्त अपनी जान देकर परमेश्वर की पवित्रता की अनिवार्यता को पूरा किया है और अब वह अपने अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार कर सकता है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाना यह कैसा अद्भुत बात है। मेरे प्रियो, हम दोषी थे, हम पापी थे, हम पाप में थे और प्रभु यीशु ने हमारे लिए मृत्यु का दंड सहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हम दोषी थे, हमने पाप किया था और उसकी सजा हमें मृत्यु मिलनी थी, परंतु प्रभु यीशु ने हमारे लिए मृत्यु का दंड सह लिया ताकि हम बच जाएं। अनुग्रह मनुष्य के प्रयासों के साथ न तो उलझा है और न ही प्रासंगिक है। परमेश्वर आपसे सहयोग का आग्रह नहीं करता है। आपके उद्धार के लिए वह न तो आपके आचरण और न ही आपके चरित्र की मांग करता है। वह तो केवल यह चाहता है कि मनुष्य उस पर विश्वास करे, उसमें आस्था रखे और प्रभु यीशु को ग्रहण करे, उसके पास आए। परमेश्वर का मार्ग सर्वोत्तम है और वही एकमात्र मार्ग है जो हमें स्वर्ग को ले जाता है। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। जी हां, प्रभु ने कहा कि बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर अर्थात स्वर्ग में नहीं जा सकता है, उसके पास नहीं पहुंच सकता है। तीतुस की पत्री 2:12 में लिखा हुआ है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि परमेश्वर इस संसार को सुधारना नहीं चाहता है। वह प्रभु यीशु को ग्रहण करने वालों का उद्धार करता है। सुसमाचार प्रभु यीशु का इनकार करने वालों से अधिक अच्छा व्यवहार करने को नहीं कहता है। यदि मनुष्य कहे, मैं अधिक अच्छा करने का प्रयास करूंगा, तो मेरे विचार में वह झूठा है। यदि आपने प्रभु यीशु का इनकार किया है तो इस संसार से सब कुछ प्राप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि आपके पास बस यही जीवन है। आज सरकार धूम्रपान से हानियां उजागर करके मनुष्य को धूम्रपान त्यागने के लिए प्रेरित करती है, परंतु परमेश्वर ऐसा करने को नहीं कहता है। आप खाएं, पिएं, आनंद करें, क्योंकि कल आपको मर जाना है। परमेश्वर आपको सुधारना नहीं चाहता, वह तो आपका हमेशा के लिए उद्धार करना चाहता है। वह चाहता है कि आप अपने शरीर नहीं परंतु आत्मा को बचाएं, उस भयानक दंड से बचें, उस नरक से बचें, उस दहकती हुई आग से बचें। जी हां, वह आपको बचाना चाहता है। इसीलिए लिखा हुआ है कि चेतावनी देता है, अर्थात बच्चे का प्रशिक्षण परमेश्वर अपनों को जो उद्धार प्राप्त हैं कहता है कि उसके लिए जिएं और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फिराएं, संसार की बुरी बातों से मन फिराएं। आज लोग कहते हैं कि इस युग में कौन सच्चा जीवन जीता है। मेरे प्रियो, आप उनको ना देखें, इस बात को देखें कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। आज लोग भ्रष्ट संसार में रहते हैं और भ्रष्टता से बचना चाहते हैं, ये सच बात है, परंतु कैसे? आप अपनी ताकत से नहीं परंतु परमेश्वर की सहायता के द्वारा आप इस संसार में जी सकते हैं। अपने जीवन को आप बदलें और परमेश्वर की निकटता में लाएं। इसीलिए कहा गया है कि सांसारिक अभिलाषाओं से मन फिराएं। तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। लिखता है उससे धन्य आशा की बाट जोहते रहें। यह परमेश्वर की योजना में अगली घटना है। प्रभु यीशु अपने कलीसिया को इस संसार से ले जाने के लिए आ रहा है। अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। मेरे मित्रों, इससे स्पष्ट है कि पौलुस प्रभु यीशु के ईश्वरत्व की शिक्षा देता था। वह महान परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता के विषय कह रहा है। वह कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसने क्या किया है? तीतुस 2 अध्याय के 14 पद में लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। उसने अपने आप को दे दिया कि हमारा उद्धार करे। उसने मूल्य चुकाया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, और तब कहता है और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। मेरे प्रियो, यह सच है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए जिएं और भले काम करें, परंतु मेरे मित्रों, उससे पहले आपका उद्धार करना होगा, अर्थात आपको यीशु के पास आना होगा, अपने पापों को स्वीकार करना होगा ताकि वह आपके पापों को क्षमा कर सके। तीतुस 2 अध्याय के 15 पद में लिखा है, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रह, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। पौलुस तीतुस से कहता है, तू एक युवक है इसलिए कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। तीतुस को पूरे अधिकार से यह सब बातें लोगों को अर्थात विश्वासियों को सिखाना था। यह एक अद्भुत पत्र है और प्रत्येक युवा प्रचारक को सावधानी पूर्वक इसका अध्ययन करना है, और इसके द्वारा से हम जान पाते हैं कि एक प्रचारक को, एक विश्वासी को, एक कलीसिया के प्राचीन को किस प्रकार का जीवन जीना है। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें इस बात का स्मरण दिलाता है कि अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार होता है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हों। वह चाहता है कि हम बचाए जाएं, उद्धार को प्राप्त करें। आइए हम परमेश्वर के पास आएं और प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार करें ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अपने कार्यों को करने पाए और हम उसके आचरण के अनुसार जी सकें। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मुझे आशा ही नहीं परंतु पूर्ण विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
यीशु तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है, मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको संभालता है, मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको संभालता है। यीशु तेरा पवित्र लहू, ये तेरा पवित्र लहू लहू चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है, तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है। मैं जब भी मुझको संभालता है, मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको संभालता है। यीशु तेरा पवित्र लहू, यीशु